सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं जेणिह कसाय पाहुड मणेयणय मुज्जलं मणन्तथं गाहाहि विवरियं तम् गुणहर भडारयं वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। अभी अभी जो हम दूसरी पुस्तक द्वितीय अर्थाधिकार प्रकृति विभक्ति, उसमें उत्तर प्रकृति विभक्ति में पृष्ठ संख्या हम 123 पर आ गए, 123। सभी मार्गणाओं में एक जीव की अपेक्षा हम काल देखते थे। कल हमने संगी मार्गणा की बात देखी थी और उसका विशेषार्थ अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। संगी आहारक आदि उसको हमने देखा था। विशेषार्थ 123 पृष्ठ पर, संगी जीवों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि संगियों में भी लब्धि अपर्याप्त तक जीव पाए जाते हैं। अतः इनके मिथ्यात्व अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि 12 कषाय और 9 कषाय का जघन्य काल पुरुष वेदियों के समान अंतर्मूर्त न होकर खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण कहा है। इनका शेष कथन पुरुष वेदियों के समान है, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। शेष कथन है सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व का संगी जीवों में कितना होगा, तो एक समय उद्वेलना करके आए। और अनंतानुबंधी का सत्व संगी है, विसंयोजना की है, मिथ्यात्व में गए फिर संयोजना हुई और मरण हुआ, उस अपेक्षा से वहां जघन्य घटित हो सकता है। निकालो ये पुरुष वेदियों की बात निकालो, वेद मार्गणा में हमने देखी है ना। 115 पृष्ठ पर देखो, वेद मार्गणा में चौथी लाइन लास्ट में, पुरुष वेदियों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय, संगी में भी जघन्य काल एक समय घटित हो सकता है, और उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर है। ये संगी संगी बना रहे तो उसमें ये भी घटित हो सकता है। तथा शेष 26 प्रकृतियों का जगन्य काल अंतर्मूर्त, यहाँ तो अंतर्मूर्त लिखा है और वहां संगी में खुद्दा भव ग्रहण, ये डिफरेंस क्यों है? ये लब्धि अपर्याप्त है, वो नपुसक वेदी है और वहां पुरुष वेदी है, वो नियम से गर्भज होगे या वो उपपाद वाले देव होगे, इसलिए उनमें वो खुद्दा भव ग्रहण नहीं होगा। पुरुष वेदी और स्त्री वेदियों में खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण काल नहीं घटित होगा, क्योंकि उनमें लब्धि अपर्याप्त पना नहीं पाएगा। जो जो लब्धि अपर्याप्त है वो नपुसक वेदी ही है। वो भी नपुसक वेदी, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त भी नपुसक वेदी, सम्मूर्छन है वो। अब असंगी की बात करें, असंगियों में एकेंद्रिय भी आ जाते हैं। जब असंगी कहेंगे तो अकेले असंगी पंचेंद्रिय की बात नहीं है, एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव असंगी है, तो एकेंद्रियों की अपेक्षा जो घटित होगा वो असंगियों में भी कहेंगे। और उत्कृष्ट काल एकेंद्रियों का सबसे अधिक है, अतः असंगियों के सभी प्रकृतियों का काल एकेंद्रियों के समान कहा है। आहारक जीवों का जघन्य काल जीवों का हुआ, जीवों का जघन्य काल तीन समय कम खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण। जैसे संगी में हमने जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण करा, परंतु तो अभी आहारक कहना है तो तीन समय तक अनाहारक रहता है कोई जीव, उस अपेक्षा से खुद्दा भोग्रहण में से तीन समय कम करें, क्योंकि हमें जघन्य से जघन्य देखना है इसलिए। और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, कोई जीव सतत निरंतर आहारक रहे। लक्ष्मीबेन, उसके लिए क्या होना पड़ेगा आहारक 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 रहने के लिए? कोई जीव आहारक कैसे रह सकता है कंटिन्यूस, आपको पता है? हाँ, रुजुगति से जाए, मरकर रुजुगति से जाएगा, मरकर रुजुगति से जाएगा। तो आहारक मिश्र में भी आहारक तो है, शरीर ग्रहण के पहले समय से वो आहारक है। अनाहारक कब होता है? जो मोड़ वाली गति से जाता है और बीच में कार्मण का योग होता है तो अनाहारक हो जाता है। तो निरंतर आहारक ही रहे, मरकर भी रुजुगति से जाता है जीव तो आहारक रहता है। तो ऐसे अधिक से अधिक कोई जीव कितने काल तक रह सकता है आहारक? तो वो अंगुल के असंख्यात विभाग काल तक, हमने देखा था ये काल कितना बड़ा है, तो उसमें तो असंख्यात सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाती है। इसी अपेक्षा से इनके मिथ्यात्वादी 22 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल उतना ही कहा है, तथा इनके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा है, तथा अनंतानुबंधी का जघन्य काल एक समय जिस प्रकार ऊपर घटित कर आए हैं उसी प्रकार आहारक के भी घटित कर लेना चाहिए, शेष कथन सुगम है। इस प्रकार कालानुयोग द्वार समाप्त हुआ। अभी अंतरानुगम करें। अंतरानुगम में एक जीव की अपेक्षा अंतर कह रहे हैं। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मिथ्यात्व का अंतर कितना होगा किसी जीव को? मिथ्यात्व का अंतर, सत्ता में से मिथ्यात्व नष्ट हो जाए और उसका अंतर नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी का हो सकता है कि नहीं हो सकता? अंतर इन्हें पहले सत्व था, फिर नहीं था और फिर दोबारा हो गया, तो क्या अनंतानुबंधी में ऐसा हो सकता है? कब हो सकेगा? अरे सासादन में आया तो क्या हुआ? सत्व तो पहले भी था तभी तो उदय आया। हाँ, जिसने विसंयोजना की है ऐसा जीव जब मिथ्यात्व में चला जाता है तो उसके फिर अनंतानुबंधी का बंदर सत्व हो जाता है, तो उसको तो हम कहेंगे अंतर है। वैसा मिथ्यात्व में नहीं, मिथ्यात्व का क्षय कर दिया और बाद में फिर मिथ्यात्व दोबारा हो गया, ऐसा कभी नहीं। ऐसे 12 कषायों का क्षय किया है और बाद में फिर वो उत्पन्न, यहाँ उदय की बात नहीं हो रही है, इसलिए वो ऊपर उपशम श्रेणी में चढ़ा नीचे उतरा उसकी बात यहाँ लेना ही नहीं। सत्ता में नहीं था और फिर वापस हो गया, पहले तो था सत्ता में फिर नहीं था और फिर वापस हो गया, उसको हम अंतर कहेंगे। तो मिथ्यात्व में नहीं हो सकता, अनंतानुबंधी में हो सकता है, 12 कषायों में नहीं हो सकता और 9 कषायों में भी नहीं हो सकता, इसलिए वहां कहा अंतरकाल नहीं है। ये क्यों कहा ये हमें समझ में आनी चाहिए बात। इन्हीं का नाम क्यों लिया, अनंतानुबंधी को क्यों छोड़ा? तो पहले सत्ता है अनादि से, विसंयोजना करने पर सत्ता से रहित हो जाता है, फिर मिथ्यात्व में चला जाता है तो फिर अनंतानुबंधी का सत्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसको छोड़कर बाकी जो है यहाँ प्रकृति उनकी अंतरकाल नहीं है। सम्यक प्रकृति का अंतरकाल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? हो सकेगा। कैसे हो सकेगा? हाँ, उद्वेलना करेगा। पहले नहीं थी सत्ता, परंतु फिर जब सम्यक प्राप्त किया तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या तो तैयार हुई, उद्वेलना करते तो नष्ट हो गई, और नष्ट हो गई तो दोबारा जब सम्यक को प्राप्त करेगा कौन सा सम्यक को प्राप्त होगा उसको? फिर प्रथम मोक्ष, क्योंकि अभी उसकी सत्ता में एक मिथ्या तो ही रह गए ना,
तो अभी वो अंतरकाल कितना हो सकता है मैक्सिमम, उसकी बात मिनिमम और मैक्सिमम वो बात करेंगे। जिनमें अंतर नहीं है उसकी बात बता दी। अब कहते हैं सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतरकाल एक समय, उद्वेलना हुई एक समय के बाद औपशमिक समय को प्राप्त कर दिया उसने, प्रतिमोक्षम समय को। और उत्कृष्ट काल देशों में अर्धपुद्गल परावर्तन, क्योंकि उसने उद्वेलना यानी एक बार समय को प्राप्त किया, प्रथमोपशम किया, मिथ्यात्व में आ गया, और अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो बाकी है उसमें से अभी वो देशों न करना, पहला अंतर्मूर्त और फिर मिथ्यात्व में आया तो भी उसकी सत्ता रही, फिर उद्वेलना किसकी बात चल रही है, हाँ समय मिथ्या पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल में उसने उद्वेलना भी कर दी, अब वो मिथ्यात्व में ही रहा कायम। तो ये देशों ने में ये भी कम कर देना, फिर भी पल्ले के असंख्यात भाग ही रहेगा कम, यानी दो चार घंटे में क्या दो चार दिन में तो उद्वेलना नहीं कर सकता कोई चीज। प्रथमोपशम देखो सम्यक अंतर कर दिया ना, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में से नष्ट कर दिया, तो जब सत्ता में से नष्ट किया है तो अभी उसकी सत्ता में एक मिथ्यात्व प्रकृति है, तो अभी क्या करेगा वो, उपशम ही करेगा। उपकरण उसने ऑलरेडी पहले से शुरू कर दिया है। देखो देखो औपशमिक समय तो कब कर सकता है, अभी उद्वेलना होने में बहुत बाकी है तब भी कर सकता है, एक सागर जितनी स्थिति बाकी है किसी की तब भी उसको तीनों प्रकृतियों का उपशम कर सकता है। अब यहाँ क्या किया है उसने, ये तो प्रोसेस चालू हो गया है और यहाँ उद्वेलना भी चल रही है उसकी। हाँ तो होते हैं, वेदक काल में तो ये बात होती नहीं है, क्योंकि वेदक काल में तो उसकी उद्वेलना कहाँ पूरी हो सकती है, वेदक काल समाप्त होने के बाद भी एक सागर जितनी करीबन स्थिति बाकी है उन दोनों कर्मों की, उद्वेलना करने के लिए उतना काल नहीं लगता है, परंतु वहाँ स्थिति कितनी बाकी है, क्योंकि उसमें भी कांडक कांडक करके वो घटाता है ना, तो एक सागर जितनी करीबन स्थिति बाकी है तब उसको उपशम योग्य हो जाता है। उपशम योग्य होता है तो तीनों की एक साथ वो उपशम ना करता है तीनों को, तो ऐसी पोजिशन में वो उद्वेलना भी चल रही है उसकी। हमने पहले तो एक समय अंतिम समय में किए थे उसको, उद्वेलना के एक समय पहले भी किया था उसने उपशम समय, और यहाँ तो उद्वेलना पूरी होने के एक समय के पश्चात। हम देखेंगे यह विशेषार्थ फिर पहले पढ़ लेंगे। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तीनों की स्थिति बराबर है, कितनी है अंत कोड़ा कोड़ी सागर। अब ऐसा जो मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में आ गया तो क्या हुआ, मिथ्यात्व का नया बंध हुआ, वो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों का हुआ, परंतु इनकी स्थिति तो इतनी रही, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति रही। अब इसका उद्वेलना चालू रहती है, इसकी मिथ्यात्व का उदय है और इनकी भी उद्वेलना होते होते चलती है बात, तो पल्ले के असंख्यात भाग काल में इनकी उद्वेलना पूरी हो जाती है। इसकी पूरी होती है पहले दोनों की साथ साथ चलती है, परंतु शुरू में सम्यक प्रकृति की उद्वेलना समाप्त होती है और फिर सम्यक मिथ्यात्व की समाप्त होती है।
तो फिर इसमें दो समय लेना चाहिए, सम्यक और उसका एक समय लेना चाहिए,
दोनों को अलग अलग गिनो, दोनों को अलग अलग गिनो। जैसे हमने 26 को अलग अलग गिना था, अपने अपने पोजिशन पर गिना था, वैसे इनको अलग अलग गिनो, एक साथ मत गिनो। यानी सम्यक प्रकृति में एक समय और सम्यक मिथ्यात्व में भी एक समय, ऐसे घटित कर सकते।
तो
वही तो है ना, जैसे मिथ्यात्व में से ये दो अनुभव घटकर हुए थे, अब उल्टा प्रोसेस होता है ना अनुभव, उसमें बढ़ जाता है, मिथ्यात्व हो जाता है, सर्वघाती रूप हो जाता है। तो जब यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक का जो काल है इन दो प्रकृतियों का, यहाँ से यहाँ तक का काल ये वेदक योग्य काल है। उद्वेलना तो चल रही है परंतु इतने काल तक तो वेदक सम्यक तो ही होगा, औक्षमिक सम्यक तो नहीं होगा, जिसके लिए असंख्यात वर्ष चले जाते हैं। इसके बाद ऐसी पोजीशन हुई है ना, अभी उद्वेलना तो चल रही है, अभी बहुत कम स्थिति बाकी है, ऐसे तो पोजीशन में तीनों को एक साथ अंतर करके उपशमित करता है, ये बीच में अंतर की करेगा, नीचे की भी परमाणु निकल जाएगी, परंतु ऊपर जो उपशमित करने का कार्य है, उपशमित जब उपशम करेगा तब अंतर होगा, बाद में उपशम करेगा, परंतु उसके पहले वो उद्वेलना का कार्य चल रहा है उसका, और उद्वेलना समाप्त तो हुई और फिर बाद में उसने वो उपशम किया। दस फोड़ा कोड़ी पल्य, हाँ यानी सागर के कुछ कम ज्यादा है, क्योंकि एकेंद्रियों में और त्रसों में उसका प्रमाण अलग अलग बताया, इसलिए मैंने करीबन एक सागर बताया, उतने की उद्वेलना करने के लिए इतना काल नहीं लगता है, वो तो अंतर्मूर्ध में भी हो जाएगा। जब उद्वेलना कर रहा है तब स्थिति कितनी बाकी है उसकी बात है, अंत कोड़ा कोड़ी से घटाते 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 एक सागर जितनी रह जाए तब दोबारा उपशम हो सकता है। कौन से जीव में कितनी स्थिति रहती है तब वेदक काल, वेदक काल कहने के लिए एक केंद्रीय कहो या त्रस कहो, समय तो वही प्राप्त करेगा जो संगी पंचेंद्रीय हुआ है। वेदक योग्य काल कहाँ तक कहना उसकी बात है। हम अंतर के नीचे देख रहे थे ना समय कहीं वेदक योग्य काल में कहीं अभी चारों गति में घूम रहा है वो, सादी मिथ्या दृष्टि है, अब उसको सभी रास्ते खुले हैं ना,
मिथ्या तो मल्टीपल के पास है,
मल्टीपल एंट्री, ये समझ में है ना उसका, सम्यक प्रकृति का अंतर इन्हें पहले में पहले समय को प्राप्त किया था, मिथ्यात्व में गया, उद्वेलना पूरी कर दी, अंतर चालू हो गया, और दोबारा सम्यक प्रकृति कब होगी, जब लास्ट में अर्धपुद्गल परिवर्तन के अंत की ओर दोबारा वो औक्षमिक समय को प्राप्त करेगा, तो उसके सत्ता में सम्यक प्रकृति तैयार हो गई, तो उसका अंतर समाप्त हुआ, उसके बाद वो संयम धारण करेगा, क्षपक्षणी मानेगा, और फिर उसके उसके पहले पहले उसका क्षय कर देगा कृतकृत्य वेदक होने तक, उसकी आगे कितना काल है उसको हमें लेना देना नहीं, हमें अंतर्घटित करना है। अब अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त, जघन्य चतुष्क का जघन्य अंतर वापस फिर दोबारा संयोजन हो जाए उसके लिए अंतर्मूल, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 132 सागर, क्योंकि उसने अनंतानुबंधी की विषम योजना की, अभी उसकी सत्ता में है ही नहीं है, तो 132 कैसे हो गए, अंतर्मूल कहाँ बिताएगा, तीसरे में क्यों मिथ्यात्व में चला गया तो फिर अनंतानुबंधी की सत्ता हो जाएगी, तीसरे में अनंतानुबंधी के विसंयोजन वाले के सत्ता नहीं, वो 24 की सत्ता वाला हो सकता है, तीसरा गुणस्थान में 24 की सत्ता वाला वहां आ सकता है, हमने पहले पढ़ा था तीसरे गुणस्थान में, तो इसलिए अंतर्मूर्त वहां बिता कर फिर वापस वेदक समय हुआ, तो विसंयोजना की है, जब तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं है और नया बंध नहीं है तब तक उसकी सत्ता में नहीं होगा। कौन सा
हाँ
घटित कर सकते हैं। ये वैदिक समित्व का उत्कृष्ट काल लेना है। छासठ सागर है, देव और मनुष्यों के भव होते रहेंगे। हमने वैदिक समित्व को घटित करके देखा था। सम्यक तो जिस भव में प्राप्त हुआ है, वैदिक समय तो प्राप्त हुआ, वो किसी भी गति में प्राप्त हो सकता है। उसके पश्चात जो यथा योग्य गति में जाएगा, देव नारकीय तो मनुष्य में आएंगे, तिरियन चाहे तो देव में चला जाएगा, मनुष्य सम्यक दृष्टि है वो भी देव में चला जाएगा। सम्यक तो बना रहना चाहिए ना उसका, तो बाद में उसके यथा योग्य भव होते रहेंगे, फिर भी उसका सम्यक तो वैदिक समय तो चल रहा है। इसी प्रकार अचक्षु दर्शनी और भव्य जीवों के कहना चाहिए, यानी ये जो सामान्य से जो कथन हुआ है कौन सा, कि मिथ्या तो बारह कषाय नौ नौ कषायों का अंतर नहीं है, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व उनमें जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि अचक्षु दर्शन तो बना ही रहता है ना, बारहवें गुण स्थान तक बना रहता है, तो उसमें भी यही कथन हो जाएगा और भव्यों में भी यही होगा। अभव्य में तो सवाल ही नहीं है। विशेषा सामान्य से ओग से यानी सामान्य से मिथ्या तो बारह कषाय और नौ नौ कषाय का अंतरकाल नहीं पाया जाता, क्योंकि इन प्रकृतियों का अभाव हो जाने पर पुनः इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। एकमात्र अनंतानुबंधी में और सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में होता है। जो उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख है उसके उपशम सम्यक्त्व के प्राप्त होने के उपांत्य समय में यदि सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जाए, अनंतर एक समय मिथ्यात्व के साथ रहकर द्वितीय समय में उपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो, तो ये ख्याल में है ना, उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख है ना, अभी वो लब्धि वाला करण लब्धि वाला है, तो उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने के उपांत समय में एक समय पहले ही वो उद्वेलना समाप्त हो जाती है और एक समय हाँ जब जब प्रथम उपशम होता है तो पांचों लब्धि पूर्वक होती है, क्योंकि वो बीच में कितने असंख्यात वर्षों का काल बीत गया है ना, तो फिर दोबारा वो सभी लब्धियां वहां होगी। तो एक समय मिथ्यात्व के साथ रहकर यानी वो अनिवृत्तिकरण का उपांत समय हम समझें, और द्वितीय समय में उपशम समय को प्राप्त हो तो उसके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का एक समय अंतरकाल प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व में है तो उद्वेलना चलती रहेगी, सम्यक तो हो जाए तो फिर वो मिथ्यात्व में से नए और परमाणु बने, तभी करण लब्धि में भी उसका मिथ्यात्व चल रहा है तो उसकी उद्वेलना भी चल रही है। उक्त दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल जो देशोन अर्ध पुद्गल परिवर्तन बताया है, सो यहाँ देशोन पद से, देशोन से कितना लेना, देखो पल्लोपम के असंख्यात भाग काल लेना चाहिए, क्योंकि अंतर तभी घटित होगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले समय में मान लेते हैं उन्हें उपशम समय प्राप्त किया, अंतर्मूर्त रहा और फिर वो मिथ्यात्व में चला गया, मिथ्यात्व में चला गया तो उद्वेलना चालू कर दी और पल्ले के असंख्यात्व भाग तक तो उसको काल लगा, तो ये सारा काल वो अर्ध पुद्गल में से घटाना चाहिए। और कितना घटाना, लास्ट कितना, यानी कौन सा उसमें शुरू का अंतर्मुत कौन सा होगा, प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त करेगा तब दोबारा उसकी सत्ता हो जाएगी सम्यक प्रकृति से, पश्चात वाला काल घटाना, यहाँ पल्ले के असंख्यात भाग और वहां जो कोई यथा योग्य अंतर्मुत, इतना भाग काल लेना चाहिए, क्योंकि उपशम सम्यक के अनंतर मिथ्यात्व में जाकर इतने काल के द्वारा इन दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना होकर अभाव होता है, जब अभाव हो गया तब अंतर गिनना शुरू किया, दोबारा जब सद्भाव होगा तब अंतर समाप्त होगा, काल और अंतर में डिफरेंस है। काल में लगातार रहने का काल देखते हैं और अंतर में बीच में नहीं था और दोबारा हो गया उसका हम देखते हैं। जो उपशम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विषय योजना करके पुनः उपशम सम्यक के काल में छह आवली शेष रहने पर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होता है, ये बात फिर दोबारा आ गई। उसके अनंतानुबंधी का जघन्य अंतर काल अंतर मुहूर्त पाया जाता है। जो उपशम समय दृष्टि अनंतानुबंधी की विषय योजना करके उसी को लिया, हाँ, और फिर दोबारा वो अनंतानुबंधी का वहाँ परिणाम हो जाता है, तो उसके संयोजना हो जाती है। तो उसका जघन्य अंतर कितना हुआ? एक अंतर्मूर्ति। उपशम समित्व का जो काल है बीच में उसका अंतर द्वितीयोपशम, क्योंकि जब विसंयोजना करने वाला द्वितीयोपशम भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रथम उपशम के पहले तो नहीं कर सकता। जब यह विषय योजना की बात आई थी तो उन्होंने द्वितीय उपशम लिखा था वहाँ, यहाँ तो उपशम इतना ही लिखा है। वो प्रथम उपशम द्वितीय उपशम भेद कहीं उन्होंने किया ही नहीं। पहले भी जब औपशमिक सम्यक्त्व के 28 की सत्ता वाला और 24 की सत्ता वाला कहा था उन्होंने, तो वहाँ 28 की वाला वो प्रथम उपशम वाला बताया था और 24 वाला द्वितीय उपशम बताया था। यहाँ तो दूसरी बात बता रहे हैं, जिस जीव ने उपशम सम्यक्त्व के काल के भीतर, ये प्रथम उपशम भी हो सकेगा ना, अति लघु अंतर मूर्त काल के द्वारा अनंतानुबंधी की विषय योजना कर ली है और पुनः उपशम सम्यक्त्व के अनंतर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है और अंतर्मूर्तकम 66 सागर वेदक सम्यक्त्व का काल व्यतीत होने पर मिश्र गुणस्थान में अंतर्मूर्त व्यतीत कर पुनः वेदक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है तथा इस दूसरी बार प्राप्त हुए वेदक सम्यक्त्व के उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्तकम 66 सागर के व्यतीत होने पर मिथ्यात्व में जाकर अनंतानुबंधी का सत्व प्राप्त कर लिया है। यह अंतर्मूर्त क्यों कम किया? देखो फिर से दोबारा पढ़ते शुरू से, हमें उत्कृष्ट अंतर घटित करना है, तो उत्कृष्ट अंतर घटित किस में? अच्छा जघन्य का भी दोबारा देखते हैं। देखो जघन्य काल कितना बताया अभी ऊपर से हम जो पढ़ रहे हैं, अंतर्मूर्त बताया ना, तो उसने जिस जीव ने उपशम सम्यक्त्व काल के भीतर, नहीं उसके ऊपर की बात है, जो उपशम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विषय योजना करके, विषय योजना की यानी वो अभाव शुरू हुआ उसका, अंतर चालू हो गया, पुनः उपशम सम्यक्त्व के काल में छह अवली शेष रहने पर सासाधन को प्राप्त हुआ। उपशम सम्यक्त्व तो पहले हुआ, उसी काल में उसने अनंतानुबंधी की विषय योजना कर ली और अभी छह अवली बाकी है तब सासाधन में गया, तो सासाधन में तो फिर दोबारा अनंतानुबंधी बंद हो जाता है उसको, तो वहां उसका अंतर समाप्त हुआ, तो ये लघु अंतर मूर्त उसका घटित हुआ जघन्य काल। अब उत्कृष्ट काल घटित करना है किसका? अभाव का, यानी विसंयोजना के अवस्था में अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगा उसको हम अनंतानुबंधी का अभाव घटित यानी अंतर घटित करेंगे, ऐसा ही लेना। औपशमिक समय तो प्राप्त किया और उसने विसंयोजना किया, औपशमिक समय तो के काल में ही विसंयोजना कर ली, अब उसको तो नीचे लाना नहीं है, क्या करना है? वेदक में जाना है उसको, तो वेदक प्राप्त किया, तो विषय योजना तो चल रही है अभी, यानी अभी उसके सत्ता में अनंतानुबंधी है ही नहीं। तो वेदक सम्यक तो लगातार कितने काल तक चला? 66 साल। अब उसमें फिर वो आए तीसरे में, फिर दोबारा 66 साल। तो उसमें से अंतर्मूर्त कम करके मिथ्यात्व में गया, ऐसा क्यों? कृतकृत्य वेदक सहित वाला वो 66 सागर होता है, इसलिए वो अंतर्मूर्त वो पूरा हो जाए तो कृतकृत्य हो जाएगा, क्षायिक हो जाएगा, अंतर हमके घटित नहीं होगा। हमें दोबारा उसको अनंतानुबंधी में लाना है तो क्या करना होगा? मिथ्यात्व में जाना होगा ना उसको। अभी वेदक समय दृष्टि है वो, औक्षमिक वाले को पहले ही जगन्य काल में सासाधन में ले गए थे, अब ये वेदक है लगातार तो वो तो सासाधन में नहीं जाएगा, अभी वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो दोबारा अनंतानुबंधी का बंधन शुरू हुआ, तो अंतर समाप्त हो गया। वेदक का 66 तीसरे गुणस्थान में आया तो भी उसके अनंतानुबंधी का विसंयोजना रही ना उसकी, फिर दोबारा 66। हाँ, परंतु कृतकृत्य करेंगे तो उसके तो अभाव ही, वो तो साध ही अनंत काल तक रहेगा उसका, उसकी बात नहीं करनी हमको, फिर दोबारा लाना है उसको अनंतानुबंधी के संयोजना, यानी फिर दोबारा उसका बंद कराना है। इसलिए शायक करते तो अंतर घटित ही नहीं होगा, इसलिए इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम यहाँ से फिर पढ़ती हूँ मैं जो उत्कृष्ट की बात जहाँ लिखी ना। जिस जीव ने उपशम समय के काल के भीतर अति लघु अंतर्मूर्त काल के द्वारा अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली है, अर्लीस्ट उसको बढ़ाने के लिए यहाँ उपशम समय के काल में ही, और उसके लिए भी कम से कम काल में कर ली, तो जो रिमेनिंग उपशम समय का काल है तो अनंतानुबंधी के अभाव वाला ही है। पुनः उपशम संयुक्त के अनंतर उसके पश्चात वेदक संयुक्त को प्राप्त कर लिया है, और अंतर्मूर्त कम 66 सागर वेदक संयुक्त का काल व्यतीत होने पर, क्योंकि पूरा अगर 66 सागर लेते हैं तो कृतकृत्य सहित 66 सागर घटित होता है। अभी वो अंतर्मूर्त सम्यक मिथ्यात्व में आया हुआ, मिश्र गुणस्थान में अंतर्मूर्त व्यतीत कर पुनः वेदक समय तो प्राप्त कर लिया है, तथा इस दूसरी बार प्राप्त हुए वेदक समय तो के उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कम 66 सागर, पहले जो एक अंतर्मूर्त कम किया था वो तीसरे में लाया, पूरा अंतर्मूर्त उसमें रखते तो क्षायिक हो जाता, कृतकृत्य हो जाता ना, कृतकृत्य वेदक सहित 66 सागर है। तो कृतकृत्य होने के लिए जो अंतिम अंतर्मूर्त उतना कम करेंगे, और यह तीसरे में लाया, फिर दोबारा और 66 सागर, उसमें भी 66 सागर पूरे नहीं ले, अंतर्मूर्त कम, तभी कभी भी 66 सागर पूरे लेते हैं तो कृतकृत्य वेदक लेना पड़ेगा, वो उसको नहीं ले सकते क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई है। कृतकृत्य वेदक कौन होता है? उसके बाद वो मिथ्यात्व का भी क्षय करता है, समय मिथ्यात्व का भी कर देता है, वापस अभी अनंतानुबंधी प्राप्त होने का कोई वहां सवाल ही नहीं है, हमें अंतर घटित करना है। अंतर का अर्थ क्या? वापस फिर दोबारा उसके सत्ता में वो अनंतानुबंधी आनी चाहिए, उसके लिए अभी इसके लिए एक ही रास्ता है, मिथ्यात्व में जाएगा तो अंतर घटित होगा। तो मिथ्यात्व में जाकर अनंतानुबंधी का सत्व प्राप्त कर लिया है, सत्व प्राप्त किया यानी कैसे किया? नया बंध किया तो सत्व प्राप्त हो गया, उसके अनंतानुबंधी चतुष्क का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 132 सागर होता है। ये कुछ कम के लिए समझ में है, कुछ कम 132, लास्ट वाला भी थोड़ा कम कर दिया, और बीच में तीसरे गुणस्थान में आया था तभी भी एक अंतर्मूर्त। इस प्रकार ऊपर ओग की अपेक्षा जो अंतरकाल कहा है, तो ये जो सामान्य से जो कथन किया है यही कथन अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवों के उक्त प्रकृतियों का अंतरकाल उतना ही जानना चाहिए, प्रकृतियों का चाहिए ना, का रह गया, समझ में आई ये बात? विसंयोजना होने के बाद उदय नहीं रहता, ना ही सत्व रहता है। वही तो कल हमने उसी की चर्चा की थी कि सासाधन में कैसे आता है। तो ऐसे कोई परिणाम होते हो गया, अभी विषय योजना की है और फिर वापस सासाधन में आ गया, उसका जब यहाँ आगे कहीं समाधान मिलेगा। यही बात कल भी आई थी ना, 121 पृष्ठ पर ये भी आई थी बात अनंतानुबंधी की, विषय योजना करने वाला कैसे दूसरे में आता है। कल इस पर हमारी चर्चा भी हुई, यही बात यही यहाँ पर ले ली। आगे कहीं उसका समाधान होता है तो हम देखेंगे। अब मार्गणाओं में बैठे, कहते 132 सागर तर समय दर्शन रहा, जाना नहीं चाहिए, ज्यादा टिकेगा अभी वो तो है ना, उसके तो जिसको कहते हैं मार्ग देख लिया है उसने। अरे जो 11वें में गया है वो भी मिथ्यात्व में कितना काल, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा।
एक बार चला गया और वापस चला गया तो वो वापस
एक घमंड की, देखो ये पढ़ते हैं ना तो ख्याल में आता है ना, अरे कितने, एक तो असंख्यात समय दृष्टि है पूरे लोक में भी, हम देखते चारों गति में है, मनुष्य संख्यात हो गए बने, अन्य गति में तो असंख्यात समय दृष्टि, उसमें से गिने चुने 608 ही मुख जाते हैं, बाकी तो रखड़ रहे। वो उसका गिनेंगे नहीं, हाँ
भ्रष्ट मार्ग भी नहीं कराएगा,
नहीं वो तो लंबा काल बीच में चला जाएगा, क्यों बारंबार जो होता है ना, जैसे वेदक काल चल रहा है और बहुत बार वो चौथे में भी गया, संयम भी प्राप्त किया, नीचे भी आ गया, फिर मिथ्यात्व में भी गया, उसको वो तो दृष्ट पथ कहते हैं, वो मार्ग देख लिया है, उसको भी आदत हो गई ना। हम नए शहर में जाते हैं और पता ढूंढते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है, अभी इसने घर देख लिया है फिर भी गिरता है इसका आचरण। आदेश निर्देश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में, अभी नरक गति के जितना काल है उसके अंदर वो अंतर भी होना चाहिए और दोबारा वो यानी फिर उसका सत्व होना चाहिए, तो मिथ्यात्व का अंतर होगा कि नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। हाँ तो आदेश निर्देश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में 22 प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है। ये कौन सी 22 प्रकृतियां होगी जिसका अंतरकाल नहीं? मिथ्यात्व 12 कषाय 13 हो गए और 9 कषाय, इनका अंतर होता नहीं है, अन्यत्र भी नहीं होता है, इनके भी नहीं होगा, हाँ कहीं पर भी नहीं होगा। तथा शेष 6 प्रकृतियों में से सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतरकाल एक समय, जैसे पहले गठित किया था उद्वेलना कर रहा था और अंतिम एक समय मिथ्यात्व में रहकर बाद में औक्षमिक समय तो प्राप्त कर लिया, और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। तथा 6 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि वो भाव ही बदल गए ना उसके, या वो भाव बदलने के पहले पहले वो उसका फिर दोबारा। देखो कैसे नरक 7वें नरक में गया और एक समय में समय के लिए वहां आप किसकी बात कर रहे हैं? अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं। अनंतानुबंधी के अंतर्मूर्त विषय योजना करने के लिए पहले में पहले उसको सम्यक दृष्टि होना चाहिए, समय को प्राप्त करके फिर विषय योजना करें। मैं समय प्रकृति की बात कर रही थी कि अन्यत्र से आया है, मिथ्यात्व अवस्था में आया, उद्वेलना कर रहा था, हमके काल नहीं घटित करना है, अंतर घटित करना है, तो उद्वेलना पूरी हो गई, बाद में सम्यक को प्राप्त किया, इस तरह से लेना, अधिक से अधिक काल लेना है, कम से कम नहीं लेना है, अधिक से अधिक। हाँ, क्योंकि उद्वेलना पूरी होने पर औषमिक समय दृष्टि हो जाता है। यह अंतरकाल ऐसा घटित करेंगे हम, अंतरकाल है ना, उद्वेलना पहले था सत्व, उद्वेलना की, अभी अधिक से अधिक काल बिताना चाहिए बिना सम्यक्त्व का, और अंत की ओर जाके सम्यक दृष्टि होगा, मिथ्या दृष्टि भी होगा, फिर मिथ्या तो में जाएगा, आगे के प्रोसेस वो कम करना पड़ेगा, कुछ कम में 33 सागर में से उसको घटाना चाहिए ना, उसके पहले वो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तो बीच में मिथ्यात्व दशा में उद्वेलना के बाद इतना काल रहा हो। एक समय में उद्वेलना पूरी हुई तो अंतर चालू हो गया, अभी वो अंतर एकदम लास्ट में, एंड में एक अंतर मुहूर्त पहले, यानी उसका एक अंतर मुहूर्त में सम्यक भी होगा, उसके बाद वो सम्यक तो एक अंतर मुहूर्त टिकेगा, फिर जाके मिथ्यात्व में चला जाएगा, और फिर वहां अंतर्मूर्त रुक के आयु बंद करेगा, फिर अंतर्मूर्त रुक के मरेगा, इतना काल छोड़कर ये छोड़ना है ना हमको, इसकी सत्ता में समय प्रकृति आ गई है। पहली पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक प्रत्येक नरक में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतरकाल एक समय, वो एक समय सब जगह घटित होगा। कैसे? वो उद्वेलना की और वो औषमिक सम्यक्त के उसमें था प्रोसेस में, और फिर वापस वो सम्यक्त प्राप्त किया तो उसकी सत्ता हो गई, और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी विषय योजना की और फिर वापस वो मिथ्यात्व में चला। तथा छह प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपने अपने नरक की स्थिति प्रमाण है, जैसे हमने सातवें में घटाया वैसे ही अपने अपने नरक में घटाया। तथा सातों नरकों में 22 प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है। विशेषार्थ पहले बता ही था उन्होंने, परंतु वहां तो नरक में सामान्य कथन किया था, अब यह फिर दोबारा एक एक नरक में 22 प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है दोबारा बताया, क्योंकि जब नरक कहते तो सामान्य से बात होती है, और नरक के जितने भेद है, नरक में कैसे भेद करते, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, मनुष्यों में सामान्य मनुष्य, लब्ध्य, पर्याप्त, पर्याप्त और मनुष्य, तिर्यंचों में सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच और तिर्यंचनी और लब्ध्य पर्याप्त, तो उनके भेदों में इसलिए यहां दोबारा यही कथन किया। अब विशेषार्थ सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतरकाल जिस प्रकार सामान्य से घटित करके लिख आए हैं, उसी प्रकार यहाँ सर्वत्र जान लेना चाहिए। उसका अंतर कब शुरू हुआ? सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, उद्वेलना हो गई, एक समय मिथ्यात्व में रहकर औषमिक समय, क्योंकि वो तो सन्मुख ही था ना उसके, और सन्मुख अवस्था में उद्वेलना भी चल रही थी, और एक समय के लिए मिथ्या तो मेरा और दूसरे समय में सम्यक तो प्राप्त किया, तो उद्वेलना के बाद एक समय बीच में अंतर हो गया, और बाद में फिर दोबारा वो प्रकृति तैयार हो गई। जिसके सम्यक प्रकृति या सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना में एक समय शेष है, ऐसा जीव विवक्षित किसी एक नरक में अपने नरक की उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ। ये भी उत्कृष्ट अंतर दिखा रहे हैं, और वहां उसने दूसरे समय में सम्यक प्रकृति या सम्यक मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, अनंतर जीवन भर वह जीव मिथ्यात्व के साथ रहा, क्योंकि उद्वेलना कर दिए ना, अभी उसकी सत्ता में है ही नहीं है, किंतु जीवन के अंत में अंतर्मूर्त काल के शेष रहने पर उसने उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके उक्त दोनों प्रकृतियों की सत्ता प्राप्त कर ली। उसके उस नरक की अपेक्षा उक्त दोनों प्रकृतियों का उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल पाया जाता है। ये समझ में आया? अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट अंतरकाल भी इसी प्रकार घटित करना चाहिए, पर इतनी विशेषता है कि प्रारंभ में पर्याप्त अवस्था के होने पर सम्यक तो उत्पन्न करा के अनंतानुबंधी की विसंयोजना करा लेना चाहिए। विसंयोजना होगी तभी अंतर शुरू होगा। अभी वो विसंयोजना करने के लिए मिथ्यात्व सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए, तो सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए तो मिथ्यात्व में जन्मना चाहिए वहां पर। तब नीचे तो मिथ्यात्व में ही जन्मता है, और पहले नरक में जन्मने वाला शायिक या कृतकृत्य वेदक होता है, तो उसके कोई अंतर का सवाल नहीं है। यानी वहां भी जो मिथ्यात्व में जन्मा है ऐसा ही जीव लेना है। यानी वहां क्या होगा, वो पर्याप्त होगा, फिर समय तो प्राप्त करेगा, फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा, तब अंतर शुरू हुआ, तब जाकर अनंतानुबंधी का अंतरकाल प्रारंभ होता है। जीवन भर वेदक सम्यक्त्व के साथ रखकर मरण के अंतिम समय में मिथ्यात्व में ले जाना चाहिए। सातवें नरक में मरने से अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में ले जाना चाहिए। अन्य नरकों में तो थोड़ा एक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला ही इतना अंतर्मूर्त छोड़े ही तो चलेगा, सातवें नरक में ज्यादा टाइम छोड़ना चाहिए। क्यों? समय तो भी प्राप्त करेगा फिर मिथ्यात्व में भी जाएगा, वहां समय तो प्राप्त करते ही वो अंतरकाल समाप्त तो हुआ था, यानी पूरे आयु में से उतना ही घटाना था जो समय तो प्राप्त करने के लिए वहां चाहिए था उतना, यहां वैसा नहीं है। समय औक्षमिक सम्यक्त्व के काल में तो नहीं होगा, विश्राम नहीं, औक्षमिक सम्यक्त्व के काल में वहां तो सासाधन में मरे मर सकता है। सासाधन वाला नरक में नहीं जाता, पर नरक वाला सासाधन में मर सकता है। देखो ये अंतर जब घटित करना है तो विसंयोजना होने के पश्चात अंतर गिनना चालू करना, और फिर दोबारा जाके वो संयोजना कब होगी, मिथ्यात्व में जाएगा तब, वहां तो मिथ्यात्व में अधिक काल बिताना क्योंकि हमको अंतरकाल घटित करना है। इसलिए अंत में वो समय दृष्टि प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में जाना चाहिए, तब वो उसका अंतर घटित होगा ना, या सासाधन में जाएगा औक्षमिक करके तब अंतर घटित होगा। सातवें नरक में मरने से अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में ले जाना चाहिए। सातवें नरक में जो उत्कृष्ट अंतरकाल है वही सामान्य से नारकियों के उक्त छह प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल जानना चाहिए, शेष 22 प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं पाया जाता, यह बात सुगम है। ये नारकियों की बात हो गई। अब तिर्यंच गति में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अंतरकाल ओग के समान है। यहां भी हुआ 22 प्रकृतियों का तो अंतर किसी भी गति में होगा ही नहीं, ओग में तो बता दिया। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अंतरकाल कितना है ओग के समान, यानी कितना हो सकता है, एक समय। क्यों? उद्वेलना करते करते आए ना, फिर कोई नहीं, किसी ने समय को प्राप्त किया। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम तीन पल्ले है। एक कुछ तिर्यंच गति में भोग भूमि वाला लिया, तो भोग भूमि वाला लिया तो उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, वो तीन पल्ले में कम क्यों किया? हाँ, गौणत्रिक में जाए या नहीं जाए उसकी बात कहाँ है? पहले मिथ्या तो मिलाया, तभी तो तिर्यंज गति रहते हुए उसकी फिर अनंतानुबंधी हो जाए उसके। परंतु जो सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न हुआ वो लेना कि नहीं लेना? हाँ वो तो कृतकृत्य शायिक है, तो उसके तो अंतर का सवाल ही नहीं है। हाँ तो वहां जाने के बाद जिसने सम्यक को प्राप्त किया है और फिर विसंयोजना की, विसंयोजना की तभी तो अंतर शुरू हुआ, और लास्ट में जीवन भर वो सम्यक भी रहा और लास्ट में जाकर वो मिथ्यात्व में गया, तब अंतर समाप्त हुआ अनंतानुबंधी। तो मेरा सवाल है यहाँ लगातार तिरंचों के भाव लेने के नहीं लेने? क्यों? वो तीन पल्ले के पहले वाला एक भाव लेते तो क्या होता? अनंतानुबंधी का विसर्जन करने वाला कौन है? सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि तिरंज दोबारा तिरंज में कैसे उत्पन्न होगा? वो तो देह में चला जाएगा, वैमानिक में चला जाएगा, ख्याल है ना? तो ये तीन पल्ले की आयु में ही लेना है, वहीं पर सम्यक को प्राप्त करके उसने विसंयोजना की और सम्यक के साथ इतने काल तक रहा और अंत में जाके मिथ्यात्व में गया। तथा शेष 22 प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है, ये तो तिर्यंज गति में इन जनरल बात की। अब पंचेन्द्रिय तिर्यंज पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंज योनिमति जीवों के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय का अंतरकाल कितना है? तो 22 प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अंतरकाल कितना है? तो जघन्य अंतरकाल एक समय जैसे वहां पर घटित हुआ था, और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्लों को में किसके लिए? अनंतानुबंधी लिया कि नहीं लिया? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व के लिए लिया, क्योंकि उसका अंतर कैसे घटित होगा? वहां उसकी सत्ता वाला जो है सादी मिथ्या दृष्टि तिर्यंच में आया, पंचेन्द्रिय में मिथ्या तो में आया, ले लो ना, और उद्वेलना उसकी पूरी हुई एक समय में, तो अंतर चालू हो गया। पहले भवों से वो उसकी सत्ता थी, तिर्यंच गति में आया तो एक समय में उसका उद्वेलना पूरी हो गई और अंतर चालू हो गया, और लगातार पंचेन्द्रियों में जन्मता रहा तिर्यंचों में, और अंत में जाके तीन पल्ले वाली आयु हो गई और उसके अंत की ओर जाकर उसने सम्यक को प्राप्त किया। तो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना के पश्चात उसने इतने भव बिताए और बाद में सम्यक को प्राप्त किया, तो सम्यक प्रकृति के लिए तो लगातार हम भव ले सकते, अनंतानुबंधी के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि अनंतानुबंधी का विसंयोजक तो सम्यक दृष्टि है। तो लगातार तिर्यंचों में भव होते रहे सम्यक दृष्टि के, ऐसा तो होगा नहीं। तिर्यंच सम्यक दृष्टि तो नियम से देव में चला जाएगा, इसलिए यहां लेना इसको विशेषार्थ। नहीं, दो लाइन रही ना। अनंतानुबंधी चतुष्क का अंतरकाल तिर्यंच सामान्य के समान है, जो अभी हमने कुछ कम तीन पल्ले देखा था, तो पंचेन्द्रिय तिर्यंच में भी वही घटित करेंगे, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त के लिए भी वही घटित होगा, और योनिमति के लिए भी उनके भी तीन पल्ले की आयु हो सकती है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम के अंतरकाल कहना चाहिए, मनुष्यों में वो तीन पल्ले वाला घटित होगा, और मनुष्यों में वो जो सम्यक प्रकृति का अंतरकाल लेना है, तो उद्वेलना करते करते मनुष्य में आया, एक समय में उद्वेलना पूरी हुई, अंतर चालू हो गया, लगातार पूर्व कोटि पृथक्त्व के इतने भव किए और फिर तीन पल्ले में गया। मनुष्यों में पूर्व कोटि का जो पृथक्त्व का प्रमाण है वो अलग होगा, हमने वो तिर्यंचों में 95 देखे थे पंचेन्द्रिय, और मनुष्यों में तो कितने देखे थे? 48 होते ना टोटल, 47 लिए, हाँ 47 विशेषार्थ। ऊपर बताए गए सभी मार्गणा स्थानों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य अंतर काल एक समय जिस प्रकार ओघ प्ररूपणा में घटित करके लिखाए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी उस मार्गणा में जान लेना चाहिए। जगन्य अंतर तो आसान है कि उद्वेलना चल रही थी और उपशम समय तो के सन्मुख था, उद्वेलना पूरी हुई, एक समय के लिए मिथ्यात्व तो में रहा और दूसरे समय में औपशमिक समय तो प्राप्त हुआ, तो अंतर समाप्त हो गया। सामान्य तिर्यंचों के उक्त दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल जो ओघ के समान कहा है, उसका इतना ही मतलब है कि ओघ की अपेक्षा उक्त प्रकृतियों के अंतरकाल में जिस प्रकार पल्लवम के असंख्यात भाग से न्यून अर्ध पुद्गल परिवर्तन का ग्रहण किया है, उसी प्रकार यहाँ भी ग्रहण करना चाहिए। पर इतनी विशेषता है कि यहाँ अर्ध पुद्गल परिवर्तन के काल में अंतर्मूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्व न ग्रहण कराकर क्या कहना चाहते हैं? ये सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की बात चल रही है। देखो यहाँ निकालना तिर्यंच गति में जो यहाँ लिखा है 125 पृष्ठ पर, तिर्यंच गति में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अंतरकाल ओघ के समान है। तो जगन्य एक समय कैसा होता है वो हमने देखा, तो उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? हो सकता है ना कि नहीं हो सकेगा? तिर्यंच गति में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? हाँ, पर असंख्यात यहाँ कौन सा लेना है जीव? अभी असंख्यात पुद्गल परावर्तन मिथ्या दृष्टि रह सकता, अब ये सम्यक तो छूट कर आया हुआ है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन रहने में उसके कोई बाधा तो नहीं होनी चाहिए। परंतु उपांत्य भोग क्यों ले लक्ष्मी बहन? उपांत्य भोग क्यों लिया? अंतिम भोग कौन सा होगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में अंतिम भव में मोक्ष जाना ही है, तो अंतिम भव मोक्ष मनुष्य का होगा, उसके पहले भव तक वो तिर्यंच में रह सकता है। वो लास्ट में सम्यक दृष्टि हुआ और फिर मिथ्यात्व में गया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो सम्यक प्रकृति फिर दोबारा तैयार हुआ, यानी वो अंतर समाप्त हुआ। मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व में डालो, सासाधन में डालो, फिर मनुष्य में आया और मनुष्य में उस भव में मोक्ष जाएगा, ख्याल है ना? इसलिए उपांत्य हो गया। ये मेंटल एक्सरसाइज है ना, नहीं तो हम दूसरे किसी में वो तो पजल ये करो वो करो उसमें अपना उपयोग लगाते हैं। यहाँ क्या लिखा? इतनी विशेषता है कि अर्ध पुद्गल परिवर्तन के काल में मिला ना 126 पृष्ठ पर बीच में विशेषार्थ के, अंतर्मूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्व न ग्रहण कराकर उपांत भव में तिर्यंच पर्याय में उत्पन्न कराकर उस पर्याय के अंत में सम्यक्त्व ग्रहण करावे। ये तो सामान्य तिर्यंचों की अपेक्षा से हम अर्ध पुद्गल परावर्तन, पंचेंद्रियों की बात आए, पंचेंद्रिय पर्याप्तों की बात आए, तो वहां तो उसका जो अपना अपना काल है उसको लेना पड़ेगा। और इस प्रकार प्रारंभ में उद्वेलना संबंधी पल्लवम के असंख्यात वे भाग काल को और अंत में दो अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष काल को अर्ध पुद्गल परिवर्तन में से घटा देने पर, ये 8 वर्ष और दो अंतर्मूर्त क्यों घटा है? जा सकता है, केवल ज्ञान में प्राप्त कर सकता है, उतनी आयु बांध के आया है वो, जितनी आयु बांधेगा उतने काल में तो मोक्ष जाना ही चाहिए उसके, तो ऐसी आयु बांध के आया है, क्योंकि उसमें तो कोई आयु घटने का सवाल नहीं है चरम शरीर के। तो उपांत भव में तिर्यंच था, मिथ्यात्व में जाकर मनुष्य मनुष्यायु तो बाद में बांधी होगी उसने या पहले भी बांधी है, फिर भी सम्यक तो प्राप्त किया उसने और फिर दोबारा मिथ्यात्व में गया। सम्यक तो प्राप्त किया या संयम डायरेक्ट प्राप्त किया और हाँ दो अंतर्मूर्त में उसके मोक्ष हो गया। कहाँ गया? अंत में वो दो अंतर्मूर्त अधिक आठ वर्ष काल को अर्ध पुद्गल परिवर्तन में से घटा देने पर जो काल शेष रहता है वह उक्त दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। पंचेंद्रियादि तीन प्रकार के तिर्यंच, कौन से तीन? पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त और योनिमति, और मनुष्य पर्याप्त तथा मनुष्यनियों का जो पंचानवे पूर्व कोटि अधिक तीन पल्योपम आदि, आदि में किसको लेना? ये पंचानवे किसके लिए कहा? तिर्यंच के लिए। आदि में वो तो पर्याप्त के लिए जो है, पर्याप्त के कितने लिए लेंगे? हाँ? वो तो संघ के साथ वो लिया था ना वहां पर, हाँ 47। और फिर मनुष्यों के लिए, मनुष्य ने के लिए तो वो तो लगातार तो ये आठ भाव यानी सात प्लस एक ऐसा हो जाएगा, मनुष्य ने के लिए सात, और पर्याप्त मनुष्यों के लिए तीनों लेना, तीनों वेद वाले लेना, आर्थिक 24 होते हैं ना उसमें से कम का। तो मनुष्य पर्याप्त तथा मनुष्यनियों का जो पंचानवे पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य आदि उत्कृष्ट काल का, आदि में अपना अपना जिसका जितना है उतना लेना, उसमें अंतर्मूर्त काल के घटा देने पर शेष काल उस मार्गणा में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल जान लेना चाहिए, क्योंकि वो शुरू में उसके उद्वेलना करते आया है, उस पर्याय में आने पर उद्वेलना पूरी हुई, अंतर शुरू हुआ और अंतिम अंतर्मूर्त पहले उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तब उसका अंतर समाप्त हुआ। अनंतानुबंधी का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल सुगम है इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। जगन्य काल विषय योजना की और फिर वापस मिथ्यात्व में गया, या उपशम सम्यक्त्व के काल में विषय योजना की और फिर सासाधन में गया, इसे हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ कहते उत्कृष्ट काल कैसे लेना, अंतर का विषय योजना की, वेदक सम्यक्त्व में ही रहा, हाँ, और लास्ट में वो मिथ्यात्व में। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तकों के सभी प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं, ऐसा क्यों कहा? हाँ? हाँ। देखो उसमें हमने काल तो घटित किया था, काल घटित किया क्योंकि समय प्रकृति का एक समय काल घटित किया था, काल में क्या था उसकी सत्ता थी कि अन्य पर्यायों में से इस पर्याय में आया और उद्वेलना चालू थी, एक समय में उद्वेलना पूरी हुई तो काल तो एक समय घटित हुआ था। अब अंतर के लिए क्या आवश्यक है? दोबारा समय तो प्राप्त कर लेना चाहिए, वो उस पर्याय में तो नहीं हो सकता। लब्धि अपर्याप्तक बना रहे और समय प्रकृति के फिर से सत्व प्राप्त हो जाए, उसके समय तो प्राप्ति की जहाँ योग्यता है वहीं पर समय प्रकृति का अंतरकाल घटित होगा। इसलिए सभी प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है कहा। अनंतानुबंधी की विषय योजना वाला तो आएगा कि नहीं? इसमें इसमें आते ही वो तो संयोजना कर रहे हैं, उसकी अंतर घटित ही नहीं होगा, यानी ये तो सत्ता वाले हैं ना, अनंतानुबंधी और सत्ता वाले हो सकते हैं, परंतु अंतर कब होगा? ये अंतर हो गया और फिर दोबारा उसके सत्व प्राप्त हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, क्योंकि उनमें भी फिर दोबारा वो अंतर समाप्त करके फिर प्राप्त करना समय को ये संभव नहीं है, अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव इनको क्यों छोड़ा? यहाँ तो सम्यक्त्व है, तो सम्यक्त्व ही बना रहता है, मिथ्यात्व में जाने का सवाल नहीं है। भले अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है, परंतु संयोजना होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उसके लिए उनके पहले गुण स्थान में जाना पड़ेगा, ये तो संभव नहीं है वहां पर। सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, रस लब्धि अपर्याप्त, सभी प्रकार के पांचों स्थावर काय, औदारिक मिश्र काय योगी, क्योंकि उस अवस्था में रहे और उसी में समय को प्राप्त करे ये तो नहीं हो सकता है। वैकृत मिश्र काय योगी, आहारक काय योगी, क्योंकि आहारक काय योग है तो छठे वाले के हैं, तो वो उसमें तो अंतर हो जाए नहीं, वो मिथ्या तो में जाए वापस आए, ये तो बात होगी नहीं। आहारक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, अपगत वेदी, अपगत वेद में भी वो फिर दोबारा वहां उस अपगत वेद रहते हुए फिर अनंतानुबंधी की संयोजना हो जाए या समय प्रकृति का वो जो अंतर हो वो फिर दोबारा हो जाए, वो बात नहीं है। अकषायी ये कौन से हो सकते हैं? या तो उपशम श्रेणी वाले या क्षायी। क्षायिक वाले के तो अंतर समाप्ति का कोई बात ही नहीं है, उन्होंने अंतर कर दिया सो कर दिया। औपशमिक वाले के तो सत्ता में पड़े हैं, अंतर पूरा करने की बात ही नहीं वहां। अकषायी मत्य ज्ञानी, अभी मिथ्या दृष्टि लिए, श्रुता ज्ञानी, क्योंकि जब वो समय को प्राप्त करेंगे तो मति ज्ञानी हो जाएंगे, मत्य ज्ञानी कहां रहेंगे। विभंग ज्ञानी, यहां भी ऐसे ही सोचना, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी। आप कहेंगे वहां तो मिथ्यात्व को लिया मगर यहाँ सम्यक्त्व को लिया, ये सम्यक्त्व है जो मिथ्यात्व में चला जाते हैं तो उनका तो मार्गणा ही बदल जाती है, तो उनका सवाल ही नहीं है। अनंतानुबंधी का अंतर हो मति ज्ञानी रहते हुए विषय योजना तो कर सकते हैं, परंतु दोबारा मति ज्ञान रहते हुए संयोजना कैसे होगी? दूसरे में चले जाएंगे तो भी वो मति अज्ञानी हो जाते हैं, पहले में जाते तो भी मति अज्ञानी हो जाते हैं, तो मति ज्ञान नहीं रहता, इसलिए उनमें भी वो घटित नहीं होता। संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, अवधि दर्शनी, अभव्य, अभव्य में भी कोई सवाल ही नहीं है अंतर का, उनके तो 26 की 26 ही होती है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि बना रहे और अंतर हो ये हो नहीं सकता। क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि में तो लगातार 28 की सत्ता है, उसमें कोई अंतर किया है और फिर दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि असंग्य और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए, ये मार्गणा होते हुए वहां पर वो अंतर की बात नहीं होती। विशेषण, जिस मार्गणा में मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों अवस्थाएं हो सकती है उसी मार्गणा में क्या कहते हैं? अभी जो हमने मति ज्ञान या मति अज्ञान देखा उसमें या तो सम्यक ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा। हमें ऐसी मार्गणा चाहिए कि जहां मिथ्या तो भी हो सकता है और सम्यक तो भी हो सकता है। ऐसी कुछ मार्गणाएं बताओ कि जिन मार्गणाओं में मिथ्या तो भी हा? अभी गति मार्गणा है, गति मार्गणा है, किसी भी गति में जाओ तो सम्यक तो भी हो सकता है मिथ्या तो। इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय वगैरह जो हमने अभी देखे, पंचेंद्रिय पर्याप्त वगैरह वगैरह, तो उनमें मिथ्या तो सम्यक तो दोनों हो सकते, तो वहां यह अंतर घटित होगा। इसलिए अभी जो लिस्ट बताई या तो मिथ्यात्व भी है या सम्यक भी है, तो कहते हैं जिस मार्गणा में मिथ्यात्व और सम्यक तो दोनों अवस्थाएं हो सकती है उसी मार्गणा में ही सम्यक प्रकृति आदि 6 प्रकृतियों का अंतर काल पाया जाता है, शेष मार्गणाओं में नहीं। अकेले एक इंद्रिय कहेंगे तो उसमें तो दोनों ही नहीं हो सकते ना, मिथ्या तो भी हो जाए और सम्यक तो भी दोबारा प्राप्त करें, वो बात नहीं हो सकती। ये ऊपर जो मार्गणाएं गिनाई है ये ऐसी मार्गणाएं है कि इनमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों अवस्थाएं नहीं हो सकती। जैसे मनपरे ज्ञान कहा है, वो तो सम्यक दृष्टि है, संयत ही है, उनमें तो मिथ्यात्व सम्यक्त्व दोनों अवस्था नहीं हो सकती। अतः इनके उक्त छह प्रकृतियों का अंतरकाल घटित नहीं हो सकता। जब सम्यक प्रकृति का अंतरकाल कहते हैं तो मिथ्यात्व में जन्मे है, उद्वेलना पूरी हुई है और बाद में सम्यक तो प्राप्त किया है, वहां सम्यक प्रकृति का अंतर हो सकता है, वो बात यहाँ नहीं होती। अनंतानुबंधी का अंतरकाल कैसे घटित होता है कि वो सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधी की विषय योजना कर दी है और वापस मिथ्यात्व में भी जाना चाहिए। जब ये संयम कहेंगे, संयत कहेंगे कोई भी प्रकार का है, तो वो तो संयत है तब तक तो मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व में जाता है तो संयतपना कहाँ रहा उसका। वो जीव को नहीं ले, उस मार्गणा को कंसिडर करता है। संयमी जीव मिथ्यात्व में जा सकता है, परंतु उसको तब हम मिथ्या असंयम में गिनाएंगे, उसको संयमी नहीं कहेंगे, उसकी संयम मार्गणा नहीं रहेगी तब तक। तो संयम के रहते हुए मिथ्यात्व कैसे होगा, समझ में है ना। मार्गणा वो चल रही है तो उस मार्गणा में वो मिथ्या दृष्टि तो है ही नहीं है। वो जीव मिथ्यात्व भले हो जाए, वो एक जीव की अपेक्षा अंतर हम घटित करेंगे, पहले संयम भी हुआ था फिर मिथ्यात्व भी हुआ, पर वो हम मनुष्य में घटित करेंगे, वो गति मार्गणा में बात आएगी, संयम मार्गणा में वो घटित नहीं होगा। चले अपनी मार्गणा कौन सी चल रही है वो उसको सोचना है। इसलिए कहते हैं, इसलिए उक्त छह प्रकृतियों का अंतरकाल घटित नहीं होता, शेष 22 प्रकृतियों का अंतरकाल कहीं भी नहीं है, किसी भी मार्गणा में कहीं भी नहीं है। अब देव गति में चल रहा है, देवों में सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का अंतरकाल कितना है, तो देवों में सम्यक प्रकृति और हुआ और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतरकाल एक समय और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त तथा उक्त सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 31 सागर है। ये 31 सागर क्यों लिया, नौवा ग्रेवे के लिए, क्योंकि वहां तक वो सम्यक और मिथ्यात्व दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती है, ऊपर तो सभी समय दृष्टि है। शेष 22 प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है, भवनवासियों से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के प्रत्येक स्थान के देवों में इसी प्रकार कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अपनी अपनी स्थिति जानना चाहिए, उनकी अपनी अपनी स्थिति नहीं, वहां की जो उत्कृष्ट आयु है उसको उस प्रमाण उसमें से जो कुछ कम करना है उसको वैसा समझना। विशेषार्थ, देवों में सर्वत्र सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतर एक समय और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतर अंतर्मूल जिस प्रकार ऊपर घटित करके लिखाए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। यह अंतर कहाँ नहीं होगा, अनुदिश और अनुत्तरों में नहीं होगा, वहां तो सारी सम्यक दृष्टि ही है। तथा उत्कृष्ट अंतर नारकियों के समान घटा लेना चाहिए, जहाँ वो समय दृष्टि ही होते हैं उनमें नहीं होता। उत्कृष्ट अंतर नारकियों के समान घटा लेना चाहिए। विशेषता इतनी है कि यहाँ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर का कथन करना चाहिए। जो समय प्रकृति का उत्कृष्ट अंतर कैसा लेना, उद्वेलना करते करते वहां जन्मा, एक समय में उद्वेलना पूरी की, अंतर शुरू होगा और वो भव के अंत में जाकर फिर सम्यक तो प्राप्त किया, तो जाके उसका अंतर समाप्त हुआ, तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट अंतर। अनंतानुबंधी में उल्टा लेना, वहां जाने के बाद सम्यक तो प्राप्त, ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना की उसने और विसंयोजना करने के बाद अंत में जाकर यानी पूरे भव तक सम्यक दृष्टि रहा, अंत में मिथ्या की हुआ। यहाँ जो उक्त छह प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम इकतीस सागर कहाँ है, वह नव ग्रहवेयकों की अपेक्षा कहाँ है। नव यानी नौवे ग्रहवेयक, क्योंकि आगे के देव नियम से समय दृष्टि ही होते हैं। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि इन मार्गणाओं में सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जघन्य अंतरकाल। वो उद्वेलना की एक समय के लिए मिथ्यात्व में रहा, दूसरे समय में सम्यक तो प्राप्त किया, क्योंकि उस प्रोसेस में था वो ऑलरेडी। और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का अंतरकाल ओघ के समान है। जब ओघ के समान है, त्रस के काल के समान, अंतर के समान ऐसा नहीं है। त्रस रहते हुए उन प्रकृतियों का अंतर लेना, आप 2000 सागर त्रस की स्थिति बता रहे हैं, उसको नहीं लेना है। देखो ओघ में क्या लिखा हमने, देखो एक सौ तेईस पृष्ठ पर किसकी बात चल रही थी, अनंतानुबंधी के क्या, किसकी के जनरल की बात चल रही थी। अनंत अंतरकाल कुछ कण अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, अनंतानुबंधी के बाद में बारे में चल रहा था कि ओग के समान है। अनंतानुबंधी के बारे में ओग के समान क्या लिखा था, देखो यहाँ 123 पृष्ठ पर, अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतरकाल अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 132 साल। अब ये बात इसमें घटित होगी ना, पंचेंद्रियों में, पंचेंद्रिय पर्याप्तों में, त्रस में, त्रस पर्याप्तों में, यही बात वहां भी कहेंगे। और जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जो उत्कृष्ट अंतरकाल है, वो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति, अपनी उत्कृष्ट स्थिति कैसे, तो उद्वेलना करते करते आया है, एक समय में उद्वेलना पूरी हुई है, अब पंचेंद्रिय 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 रहा और अंत में जाके वो समय दृष्टि हुआ, या त्रस में आया, उद्वेलना की, अंतर शुरू हुआ और त्रस की स्थिति चालू रही, वहां हो गया, समय प्रकृति के लिए हो गया, उसमें कुछ कम कर देना। शेष प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है, वो तो कहीं भी नहीं है। विशेषार्थ सामान्य पंचेंद्रिय आदि की पहले जो उत्कृष्ट काय स्थिति बतलाए है, यानी सामान्य पंचेंद्रिय 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 रहे, जब सामान्य पंचेंद्रिय कहते थे तो संगी असंगी भी आए और मनुष्य देव नारकी सभी आ गए, पंचेंद्रिय रहे इतनी बात, पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी है। उसमें से कुछ कम कर देने पर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल हो जाता है। कुछ कम का प्रमाण जैसा ऊपर घटित करके लिखाए है, उसी प्रकार यहाँ पर घटित करके जान लेना चाहिए। शेष कथन सुगम। अब योग मार्गणा, योग मार्गणा के अनुवाद से पांचों मनोयोगी, कॉमा लगाओ, पांचों वचन योगी, काय योगी, फिर कॉमा, औदारिक काय योगी और वैकृत काय योगी जीवों में तथा चारों कषाय वाले जीवों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अंतरकाल कितना है, जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा क्यों नहीं है, योग का काल अंतर्मुहूर्त है। और ये काय योग का उत्कृष्ट काल कितना है, काल, परंतु वो काय इतना रहेगा असंख्यात वाला, वो तो एक इंद्रिय में है, उसमें तो समय तो प्राप्त करने की बात नहीं है, इसलिए औदारिक का योग ही लिया। औदारिक का योग भी एक इंद्रियों में लंबा काल है, उसको तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता वाला नहीं है। तो ये औदारिक का योगी कौन सा लेना है? अन्य पंचेंद्रिय जो है, तो उसमें औदारिक का योग में आते ही उद्वेलना पूरी हुई है, और फिर औदारिक का योग पूरा होने के पहले पहले सम्यक की प्राप्ति हुई है, तो अंतर्मूर्त घटित होता है। उत्कृष्ट अंतर भी अंतर्मूर्त में पलट जाते हैं ना, उसके पहले पहले ये कार्य होना चाहिए। औदारिक का योग का काल कितना है? ये तो संगी पंचेंद्रिय की बात है, जो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, तो उसका एक एक योग का काल अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त है। औदारिक का योग, मनोयोग, वचन योग पलटते रहता है। औदारिक का योग में आया, उद्वेलना पूरी हुई, अंतर चालू हो गया, और उसी योग में रहते हुए वो सन्मुख था ना उसके, तो उसी योग में रहते योग पलटने के पहले पहले उसको सम्यक तो प्राप्त हुआ, तो अंतर समाप्त हुआ उसका। इसलिए उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। देखो वैकृत का योग में भी ऐसे ही समझना, चार कषाय वाले जीवों में चारों ने चार एक साथ नहीं समझना है, किसी एक कषाय में है वो, तो उस कषाय का काल भी अंतर्मूर्त है। उस कषाय ना मनोयोग में आया, उद्वेलना समाप्त हुई, और वो उसी मनोयोग में आया। कब आया वो उसकी बात नहीं है, पर्याप्ति का सवाल ही नहीं यहाँ पर। जब कभी चालू हो गया? अभी ये था मनुष्य में लेना है, तुम आठवें साल के बाद वाला मनोयोग लेना। ये तीनों योगों का परिवर्तन चलता रहता है, उस समय की बात है। हाँ, किसी एट एनी गिवन पॉइंट मनोयोग में आया है, एक समय में उद्वेलना पूरी की है, उस पर्याय में आने का एक समय नहीं लेना है आपको, और फिर वापस मनोयोग में रहते हुए उसी काल में उसके समय को प्राप्त होगा।
योग का जो अंतर्मूर्त है, हाँ, वो उपशम के अंतर्मूर्त से पड़ा है।
उपशम पूरा होने की जरूरत ही नहीं है, उपशम प्राप्त पहला समय लेते ही वो समय प्रकृति की सत्ता होगी उसकी। ये वो उपशम समय तो चलता रहे, तो उसमें योग का परिवर्तन कितने बार होगा? योगों का पलटना होता रहता है वहां पर। किसी एक योग में उस प्राप्त तीनों योग में उसको सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि उसको मनोयोगी चाहिए या वचन योगी चाहिए, या तो पांचों लिए ना, उसका अर्थ है उसी काल में उसको सम्यक प्राप्त हुआ है, तथा शेष प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है। विशेषार्थ जिसको सम्यक प्रकृति या सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना किए एक समय या अंतर्मूर्त हुआ है, ऐसे किसी उपर्युक्त योग वाले मिथ्या दृष्टि जीव के उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के साथ पुनः जब सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का सत्व हो जाता है, तब उक्त योग वाले या किसी कषाय वाले जीव के उक्त दोनों प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से एक समय और अंतर्मूर्त बन जाता है। जब उसमें आने पर एक समय में उद्वेलना पूरी हुई थी और एक समय में समय तो प्राप्त किया, तो एक समय घटित होता है, और उत्कृष्ट अंतर योग परिवर्तन के पहले पहले उसको समय तो प्राप्त होता है, तथा शेष प्रकृतियों का यहाँ अंतरकाल संभव नहीं है। अब ये वेद मार्गणा कल ही पढ़ेंगे। जावाणी